लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पुण्य शुक्रवार पर एक चिंतन। प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्के, सिस्टर अनुग्रह मिंज एवं डीकन प्रमोद गुजूर। आज पुण्य शुक्रवार है। मानव जाति के आगाध प्रेम के खातिर ईश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त के आत्म बलिदान की यादगारी का दिन। आज ही के दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मानव जाति को पाप और बुराई के बंधन से मुक्त करने के लिए क्रूस की अपमानजनक मृत्यु स्वीकार की थी। अपने प्रेम एवं क्षमाशीलता की शक्ति से हर प्रकार की बुराई पर विजय पाकर यीशु ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को दुनिया की कोई भी बुराई की शक्ति विचलित नहीं कर सकती।
तुझे गुनाह से बचाया तेरे
गुड फ्राइडे का दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुखभोग और मृत्यु की यादगारी में उपवास और परहेज का दिन है। वेदी खाली रखी जाती है और पौत्र मिस्सा नहीं होता है। इसके बदले एक विशेष धर्म विधि सम्पन्न की जाती है जिसमें पौत्र क्रूस की आराधना, दुखभोग वृतांत का पाठ, निवेदन की प्रार्थना और पौत्र परम प्रसाद का वितरण किया जाता है। गिरजाघर की घंटियां नहीं बजाई जाती हैं, जो शोक का प्रतीक है। ख्रिस्तों के लिए यह एक महान दिन है जब वे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुखभोग और मृत्यु की याद करते हुए उनके अपार प्रेम पर चिंतन करते हैं। श्रोताओं, अक्सर किसी प्रियजन की मृत्यु या किसी दुखद घटना की याद कर हम उस दिन को अपने लिए काला दिवस मान लेते हैं और उससे याद करना नहीं चाहते। पर आज हम जिस दिन को मना रहे हैं उससे गुड फ्राइडे या पुण्य शुक्रवार कहा जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है? लोग इसे 2000 सालों से क्यों मनाते आ रहे हैं और आज मेरे लिए यह दिन क्या मायने रखता है? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए आइए हम मुक्ति इतिहास को पलट कर देखें। मुक्ति इतिहास की कहानी उत्पत्ति ग्रंथ से शुरू होती है।
ईश्वर ने दुनिया की सृष्टि की, उसे हर प्रकार के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से भर दिया जो अत्यंत सुंदर थे और ईश्वर की अपार महिमा का बखान करते थे। तब ईश्वर ने मानव को अपने ही हाथों से बनाया, उसे अपने ही प्रतिरूप में गढ़ा ताकि वह उनके आनंद के सहभागी बने। लेकिन ईश्वर की यह पवित्र योजना आदि मानव के अवज्ञा द्वारा भंग हो गई। आज्ञा भंग कर मनुष्य ने ईश्वर के साथ अपना संबंध तोड़ दिया। उनसे दूर होने के कारण मानव जाति अब बुराई के जाल में फंस गई, क्योंकि मानव स्वभाव से ही बुराई की ओर झुका हुआ है। बाइबल में हम इसका स्पष्ट उदाहरण पाते हैं, जैसे काइन द्वारा अपने भाई हाबिल की हत्या, नूह के समय में जल प्रलय की घटना, जोसेफ का अपने भाइयों द्वारा बेचा जाना, प्रतिज्ञात देश की यात्रा में इसराइलियों का विरोध और मूर्ति पूजा इत्यादि। मानव के ईश्वर से नाता तोड़ने और बुराई के जाल में फंस जाने के बावजूद ईश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे बचाकर पुनः अपने पास लाना चाहा। इसके लिए उन्होंने नबियों को भेजा और अंत में खुद अपने पुत्र को भेजा। ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त मानव का रूप धारण कर मनुष्यों को बचाने आए। लोगों के साथ रहकर उन्हें प्रेम, शांति, आनंद और भाईचारे के रास्ते पर चलना सिखाया। दुखियों का दुख दूर किया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दी और कोढ़ियों को शुद्ध किया। पर इतना ही काफी नहीं था। वे उन्हें पिता के साथ मेल कराना चाहते थे ताकि वे उनके अनंत सुख के सहभागी बन सकें। इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सुसमाचार बतलाता है कि पुण्य बृहस्पतिवार की शाम यीशु ने चेलों के साथ पास का भोज किया। भोजन के बाद आदत के अनुसार वे प्रार्थना करने गेतसेमनी बारी गए। वे प्रार्थना कर ही रहे थे कि चेलों में से एक यूदस ने उनके साथ विश्वासघात करते हुए उन्हें फरीसियों के हवाले कर दिया। फरीसी और शास्त्री जो यीशु को फंसाने की ताक में रहते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे उन्हें यहूदियों के प्रधान याजक अन्नस के पास ले गए। अन्नस के सवाल कि क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो, यीशु के निडरता पूर्वक जवाब देने के कारण उन्हें थप्पड़ मारा गया और उन्हें कैफस के पास भेज दिया गया। उसके बाद यीशु को रोमी सम्राट पोंतुस पिलातुस के सामने पेश किया गया। पिलातुस ने यीशु से पूछताछ की और उसमें कोई दोष नहीं पाया। इस पर वह उन्हें मुक्त करना चाहते थे, लेकिन यहूदी नेताओं की जिद पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों के हवाले कर दिया। मृत्यु दंड के पहले यीशु को कोड़े लगाए गए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और उनका मजाक उड़ाया गया। ये हरकतें क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपराधी को कमजोर करने की एक प्रथा थी। क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला जाना उस समय की घोर अपमानजनक सजा थी। कहा जाता है कि कोड़े लगाते हुए सिपाहियों ने यीशु को अत्यधिक पीड़ा देने की कोशिश की। इतना होने के बाद उनके कंधे पर भारी क्रूस लाद दिया और उसे कलवारी पहाड़ तक पहुंचाने के लिए मजबूर किया। क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ के रास्ते पर यीशु 3 बार भूमि पर गिरे। वे इतने निर्बल हो चुके थे कि बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस पर सिपाहियों ने सिरेनी सिमोन नामक व्यक्ति को पकड़कर यीशु की सहायता करने के लिए मजबूर किया। कलवारी पहाड़ पहुंचकर उन्होंने यीशु को कीलों से क्रूस काठ पर जकड़ दिया और 2 डाकुओं के बीच क्रूस पर लटका दिया। यीशु को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी, लेकिन उन्होंने किसी को अभिशाप नहीं दिया बल्कि अपनी बुराई करने वालों को माफ करते हुए कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस समय यीशु को न केवल शारीरिक पीड़ा हो रही थी बल्कि वे मानसिक रूप से भी एक दर्दनाक स्थिति से गुजर रहे थे। तब उन्होंने पुकार कर कहा, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह स्तोत्र 22 की पहली पंक्ति है जिसको राजा दाऊद ने दुख की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कही थी। इसी पंक्ति को दोहराते हुए यीशु एक निर्बल किंतु ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने वाले व्यक्ति की तरह प्रार्थना करते हैं। अच्छी तरह समझा जाए तो ख्रीस्त के ये अंतिम शब्द विजय के शब्द थे, क्योंकि घोर पीड़ा के बावजूद उन्होंने ईश्वर को नहीं भुलाया। कुछ देर बाद सैनिकों ने यह निश्चित करने के लिए कि वे मर गए अथवा नहीं, उनकी बगल में भाला मारा। भाला लगने पर यीशु की छाती से तुरंत रक्त और जल बह निकला। ख्रीस्त की मृत्यु की घड़ी पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। धरती हिल गई, कब्रें खुल गईं और मंदिर का पर्दा फट गया। इन घटनाओं के बाद यीशु के पार्थिव शरीर को क्रूस से उतारा गया एवं एक नई कब्र में दफना दिया गया। यीशु ख्रीस्त जिन्होंने मानव मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, यह उनके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने मानव मुक्ति की कीमत चुकाई है। अब स्वर्ग का द्वार पुनः खुल गया है और जो उन पर विश्वास करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलते हैं उन्हें कभी निराश और लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु सदा हमारे साथ हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते एवं दुश्मनों से हमें बचाते हैं।
श्रोताओं, अगर हम दुनिया की स्थिति पर एक नजर डालें तो हमें सब कुछ समझ में आएगा कि व्यक्ति अपने मान सम्मान और अहंकार के लिए किस हद तक स्वार्थी हो सकता है। ओश्विस नजरबंद शिविर की आजादी और रुआंडा में नरसंहार के स्मारक हमें मानव की बर्बरता की याद दिलाते हैं, पर इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। मानव की क्रूरता की कहानी आज भी जारी है। सीरिया, यमन, इथोपिया, म्यांमार, रूस, यूक्रेन और अब इसराइल एवं फिलिस्तीन भी इस कहानी में शामिल हैं। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए पोप ने बार बार चेतावनी दी है। यह तीसरा विश्व युद्ध है जो टुकड़ों में लड़ा जा रहा है। अनगिनत बच्चे, महिलाएं और निर्दोष लोग मौत, विस्थापन, अपहरण एवं भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। लोगों के घर, स्कूल, अस्पताल, दुकान सभी ध्वस्त कर दिए गए हैं। लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर पड़ोसी देशों की ओर भाग रहे हैं। उन्हें बमों और मानव तस्करों का सामना करना पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। मणिपुर की घटना कौन भूल सकता। शत्रुता की आग ने किस तरह बहुतों का जीवन बर्बाद कर दिया। कितने लोगों की जानें गईं, कितनी महिलाओं, बालिकाओं को निर्वस्त्र कर उनकी इज्जत लूटी गई सिर्फ जाति एवं धर्म के नाम पर। आज पूरी दुनिया चिंतित है कि इन हिंसाओं को कैसे रोका जाए। यह हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आखिर यह तबाही कब तक चलता रहेगा। खून की यह प्यास कब और कैसे शांत होगी। यीशु ने पापी ने स्त्री से कहा, जो यह जल पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर प्यास कभी नहीं लगेगी। धन, सम्मान, काम वासना, स्वार्थ और अहंकार की प्यास कभी शांत नहीं होती। यह प्यास मानवता की चाह और आकांक्षाओं की प्यास है जो उसे किसी भी हद तक गिरा सकती है। लेकिन यीशु के प्रेम में वह शक्ति है जो खून की हर प्यास बुझा सकता है और शत्रुता के लगातार बरसते बमों के बीच मित्रता की खूबसूरत मिसाल खड़ा कर सकता है। इसका एक उदाहरण बुधवार को वैटिकन में देखने को मिला, जब पोप ने दो ऐसे पिताओं की ओर इशारा किया जिन्होंने अपनी बेटियों को युद्ध की क्रूरता में खो दिया है। इसराइल एवं फिलिस्तीन में जिस तरह से जंग छिड़ा हुआ है, आपस में एक दूसरे को मित्र कह पाना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन रामी और बसीर ने ऐसा कर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश किया है और शांति का रास्ता दिखलाया है। रामी एलहलान एक इसराइली यहूदी हैं और उनकी 13 साल की बेटी की मौत यरूशलेम में एक आत्मघाती बम से हुई। दूसरी ओर बसीम अरामीन एक फिलिस्तीनी मुस्लिम है। उनकी 10 साल की बेटी अबीर की मौत उसके स्कूल के बाहर इसराइली सैनिकों के द्वारा हुई। दोनों अब एक दूसरे के मित्र बन चुके हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी बेटियों को खोने का गम नहीं है, लेकिन इसके बाद वे चाहते हैं कि कोई अपना बेटा या बेटी ना खोए। एलहलान ने पोप से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से कहा, हमने इस तथ्य के बारे में बात की कि मैं एक यहूदी हूँ और आर्मिन एक मुस्लिम और पोप एक ईसाई हैं। हम सभी इंसान हैं और हम भाई हो सकते हैं। आर्मिन ने कहा, यह वैसा ही है जैसा यीशु ने कहा था, अपने शत्रु से प्रेम करो। एलहलान मेरा दुश्मन है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
जो सलीब गम तूने सहा, ए मेरे खुदा तेरा शुक्रिया।
यीशु द्वारा दिखाए गए प्रेम के मार्ग पर चलकर हम भी पिता ईश्वर की उस पौत्र योजना में शामिल हो सकते हैं जिसको उन्होंने हमारे प्रेम के लिए बनाई और जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे यीशु को दुनिया में भेजा। वह योजना है मानव की खोई हुई गरिमा को वापस दिलाना और एक ऐसे राज का निर्माण करना जिसमें प्रेम, न्याय, भाईचारा, सहानुभूति एवं शांति की कद्र हो, जहाँ क्षमाशीलता एवं कोमलता के साथ सबको अपनाया जाए और जिसमें भय, नफरत, आतंक, स्वार्थ और हिंसा को जगह ना मिले, कोई दुखी, विस्थापित, परित्यक्त और पराया ना हो, धर्म, जाति या रंग के कारण किसी को अपमान या तिरस्कार सहना ना पड़े, परिवार और समुदाय में किसी को अकेला, परित्यक्त या लाचार महसूस ना करना पड़े, धीरज व प्यास से सभी मिलजुल कर हर प्रकार की बाधाओं का सामना कर सकें। विसराह पर चलने में मदद करने के लिए हमारे एकमात्र सच्चे सहायक हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त, जिनके बारे इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14-16 में इस प्रकार कहा गया है,
हमारे अपने एक प्रधान याजक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं, इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे प्रधान याजक हमारे दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। ईश्वर के पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वे पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेलकीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सभी के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं।
क्रूस उठाया मेरे गुनाह का, कलवारी पर तूने मेरे मसीहा रक्त बहाया, जिस्म से अपने मुझको क्षमा दी, पापों से मेरे मसीहा क्रूस उठाया मेरे गुनाह।
आज प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस पर से हमें कह रहे हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए सब कुछ सहा है, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे का ख्याल रखो और यदि किसी प्रकार की नासमझी हो जाए तो एक दूसरे को माफ कर दो। दूरी और विभाजन में नहीं बल्कि सबसे मिलजुल कर रहने में ही सच्ची खुशी है। अत्याचार और संकट में धीर बने रहो, डरो मत, मैंने बुराई पर विजय पाई है, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। श्रोताओ, पुण्य शुक्रवार हमारे लिए तभी अर्थपूर्ण होगा जब हम यीशु के अथाह प्रेम को स्वीकार करेंगे, उन्हें अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे जिसकी कीमत उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर की है, और सबसे बढ़कर उस प्रेम को अपने दैनिक जीवन में अपने परिवार, समाज और दुनिया में जीने का प्रयास करेंगे। इससे एक सुंदर वातावरण बनेगा और एक नई आशा जगेगी जो सबके चेहरे पर मुस्कान भर देगी। आप सभी को पुण्य सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं।
जो सलीबी गम तूने सहा, ए मेरे खुदा तेरा शुक्रिया।
और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।